के बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा देवी उपस्थित है। हम सब एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन जी, 1974 से ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं और 1980 से आप विश्व की सेवा के लिए विश्व पिता का ज्ञान रूपी अमृत बांट रहे हैं। आप सभी दीदी से परिचित हैं कि दीदी ने SML कोर्स की रिसर्च प्यारे बाबा ने दीदी से ही कराई। रामायण और सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी आपकी गहरी पैठ है। आप सारे विश्व में प्यारे बाबा के द्वारा रचित गीता है इसको प्रमाणित कर रही हैं और बड़े ही प्रेम से हर धर्म के हर समाज के लोग धार्मिक लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं कि सचमुच गीता ज्ञानदाता शिव ही है। ऐसी हमारी आदरणीय बहन जी जिन्होंने हजारों कर्मचारियों को कंपनीज में अधिकारियों को प्यारे बाबा का सत्य परिचय दिया और उनको मानसिक सुख शांति दी, अर्थात कंपनीज में दीदी की पहल पैठ सबसे सर्वोपरि है। इसी के साथ साथ आप राजनीतिक प्रभाग की पॉलिटिकल विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी कुशल वक्ता, विषय की पकड़ और ज्ञान और योग की गहरी पैठ जिनकी है उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आज का ब्राह्मणों के जीवन का जो बल है वो हमें स्मृति में दिलाएं ताकि हम फरिश्ता बन सकें और मास्टर पवित्रता के सागर की लहरों में लहरा सकें। आदरणीय दीदी,
ओम शांति। बाबा ने हर रोज कितने ज्ञान रतन दिए हैं और इतने सालों से बाबा हम बच्चों को नित्य श्रृंगारे जा रहे हैं, भरपूर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ बाबा अपने बच्चों को योग्य पात्र बनाते जा रहे हैं। जो भी बच्चों में त्रुटि है उन त्रुटि को भरने के लिए विशेष विधियां बताते हैं कि जिन विधियों के माध्यम से हम अपने जीवन में उस बल को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए उसको विकसित करें ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो उसको पार करने के लिए हम सक्षम हैं। जिस तरह से योग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि जिसमें ये अष्ट शक्तियां हैं वो अष्ट रत्नों में आने के योग्य बन जाता है, परंतु ये 8 शक्तियों के साथ साथ 8 बल भी है। जो बल भी ब्राह्मण जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर वो बल हमारे जीवन में न हो तो कहीं न कहीं हम कोई न कोई कमजोरियों के शिकार अवश्य बनते हैं। तो तो इसीलिए वो बल कौन से हैं। बहुत सुंदर बात मैंने एक पढ़ी कि जैसे संसार के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर हर चीज, हर प्लेनेट एक शक्ति के आधार पर चल रहे हैं या खड़े हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर इतने हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये सब कहीं हवा में गिरते नहीं है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल वो हमें आकर्षित करके, हर चीज को आकर्षित करके इस पृथ्वी के साथ जोड़े रखता है, है ना? और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी से ही निकलता है, भीतर से ही निकलता है, जो हर एक को पकड़ के रखता है। ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी जो बल है, वो बल ही हमें हर परिस्थिति को पार करने की हिम्मत भी देता है, हमें शक्ति भी देता है, या अष्ट शक्तियों को विकसित करने की भी ताकत देता है, और यही बल आगे बढ़ाने के लिए भी हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो कौन से बल है हमारे लिए? तो सबसे पहला बल जो आवश्यक है, जो मम्मा के जीवन को अगर आदर्श के रूप में हम सामने रखें, ये मां सी मम्मा का है, तो अगर मम्मा को सामने रखें, तो मम्मा में सबसे पावरफुल बल कौन सा था? सबसे पावरफुल बल था निश्चय का बल। निश्चय का बल, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय। आप लोग ने इन दिनों में कई मम्मा की कहानियां ऐसी सुनी होंगी कि जिसमें मम्मा के निश्चय का परिचय मिला होगा, कि मम्मा के अंदर कितना निश्चय का पावरफुल बल था। बाबा ने कोई बात कह दी और जी बाबा करके मम्मा ने उस बात को कभी सवाल नहीं किया कि कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है। हम लोगों को अगर कोई काम कहे और हमारी शक्ति और क्षमता के बाहर हो, तो हम शायद कहने वाले को ये भी कह दे कि नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। या फिर हम ये भी कह देते हैं कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, ये तो असंभव है, इतने कम समय में ये नहीं हो सकता है, थोड़ा और ज्यादा वक्त की आवश्यकता। लेकिन मम्मा ने किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा नहीं बोली। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि कि भगवान नहीं जानता है क्या हमारी शक्ति और क्षमता को, अगर योग्यता नहीं होगी तो भी बाबा भर देगा, ये भी एक प्रकार का विश्वास। तो जिसके पास ये निश्चय का बल है, विश्वास का बल है, वो विश्वास का बल क्या नहीं कर सकता है। दुनिया में भी कहावत है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास का बल ऐसा होता है जो बड़े से बड़े पहाड़ जैसी बातों को भी क्या खिसका देता है, खत्म कर देता है, और रास्ता आसान हो जाता है। ये विश्वास का बल, स्वयं में निश्चय, स्वयं में विश्वास, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता में विश्वास का बल बहुत बड़ा है, जो असंभव को संभव करने की ताकत दे देता है, है ना? और तीसरा निश्चय है परिवार में निश्चय। परिवार में निश्चय क्या करता है? संगठन का बल जमा करता है। तो तो एक है स्वयं में निश्चय, निश्चय का बल कहो, विश्वास का बल कहो, बाबा में निश्चय, जिसके लिए कहा जाता एक बल एक भरोसा। स्वयं में निश्चय माना विश्वास का बल, आत्मविश्वास का बल। बाबा में निश्चय माना एक बल एक भरोसा, दूसरा कोई सवाल अंदर खड़ा ही नहीं हो सकता है, उठ ही नहीं सकता है। और परिवार में निश्चय माना संगठन का बल, कि जहां इतना बड़ा परिवार हो, दुनिया के अंदर भी कोई परिवार के अंदर 8-10 लड़के हो, जवान बेटे हो, है ना, उस परिवार में अगर एकता और संगठन हो तो लोग भी डरते हैं, भाई ये 8-10 है और इनका संगठन इतना पावरफुल है, इनका आपसी प्यार इतना है कि एक को अगर हाथ भी लगाए ना तो क्या हो जाएगा। तो हम कितने हैं एक सेंटर में कितने हैं। लोगों को डरना नहीं चाहिए, अरे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनके संगठन की शक्ति का कोई ये नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, उंगली उठाने की भी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन संगठन का बल चाहिए। ये संगठन का बल तभी होगा जब आपसी संबंध हमारे कैसे होंगे, स्नेह प्यार सहयोग की भावना को लिए हुए, शुभ भावना शुभ कामना को लिए हुए। ये है निश्चय का बल, कि स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय और परिवार में निश्चय का बल। तो ये बल क्या नहीं कर सकता है। माया भी सबसे पहले अटैक कहां करेगी, वो हमारे निश्चय को ही तो हिलाने का प्रयत्न करेगी, और जहां कमजोर कड़ी देखेगी वहां अटैक करने का प्रयत्न करेगी। अगर स्वयं में निश्चय की कमी है तो वहां अंदर डाउट्स के संकल्प, संशय के संकल्प उत्पन्न करेगी, सेल्फ डाउट, आत्मग्लानी जिसको कहा जाए, वो संकल्प उत्पन्न करेगी, नेगेटिव विचार उत्पन्न करेगी। अगर बाप में निश्चय की कमी है तो वहां कोई ना कोई प्रकार से हिलाने का प्रयत्न करेगी। देखा भगवान के बनने के बाद क्या मिला, क्या हुआ, रोज नई प्रॉब्लम्स, रोज नई बातें, हिलाएंगे ना, माया तो हिलाने का काम करती है। और अगर परिवार में देखती है कि स्नेह सहयोग शुभ भावना की कमी है तो वहां क्या एक दूसरे की कमजोरी देख करके जो स्नेह प्यार होता है उसको खत्म करने का प्रयत्न करेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि वही कमजोर कड़ी है। तो इसीलिए सबसे पहला बल है निश्चय का बल, विश्वास का बल, एक बल एक भरोसा या संगठन का बल, ये पहला बल है। दूसरा बल है कौन सा बल, दूसरा बल है ज्ञान का बल कहो, श्रीमत का बल, है ना, ज्ञान का बल कहो या श्रीमत का बल कहो। जब बाबा ने ज्ञान तो सबको दिया है, लेकिन जो ज्ञान को हजम करते हैं वो अंदर में ताकत बन क्रिएट करता है, आत्मा की शक्ति बनने लगती है। और उसमें भी जो श्रीमत का हाथ मैं हाथ अपना दे देता है तो श्रीमत का बल क्या करेगा, बड़े से बड़े तूफान में भी टकराने की हिम्मत प्रदान कर देगा। इसलिए निराकार बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत का हाथ है। वो श्रीमत के हाथ में अपना हाथ देने की बात है, यानी श्रीमत को पालन करने में आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदारी से श्रीमत को तोड़ मरोड़ना नहीं, लेकिन जो है जैसा है उस हिसाब से उसको फॉलो करना, उसको स्वीकार करना, ये है श्रीमत के हाथ में अपना हाथ दे देना। तो उसमें निश्चय का कनेक्शन है। अगर निश्चय होगा तो श्रीमत के हाथ में अपने हाथ को दे सकेंगे। अगर निश्चय में कमी है तो श्रीमत को भी तोड़ना मरोड़ना चालू करेंगे, या श्रीमत में अपना हाथ नहीं दे पाएंगे, श्रीमत को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। भाव ये है कि जैसे वो कहानी याद आती है कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को मेले में घुमाने ले गया, और मेले में घुमाने के समय अचानक का जोर का तूफान आया, एकदम प्रकृति बदल गई और एकदम तूफान खड़ा हो गया, तूफानी वातावरण बन गया। अब उसमें अफरा तफरी मचने लगी, दौड़ भाग होने लगी, तो पिता ने अपने बच्चे को कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। तो बच्चे ने कहा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। कहा, बात तो एक ही है ना, तुम मेरा हाथ पकड़े या मैं तेरा हाथ पकड़ू। कहा, नहीं, बात एक नहीं है, मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, और इसीलिए कोई ऐसी बात आई तो छूटने की संभावना है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो इतना कस के पकड़ेंगे जो इस तूफान में कुछ भी हो जाए लेकिन आप मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे विश्वास है। अगर हम भी बाबा का हाथ पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, श्रीमत को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता है, और उसमें क्या हो सकता है, हाथ छूटने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया तो बाबा हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। आप छोड़ने का प्रयत्न करेंगे लेकिन बाबा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, है ना? बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। ये अनुभव हर एक को होगा कि कई बार कई लोगों ने आपके निश्चय को हिलाने का प्रयत्न किया होगा, सोचा होगा कि अरे भाई ये दुनिया में चला जाए, शादी कर ले, ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन जिसने अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया, बाबा उसके लिए और एक रास्ता खोल देता है जहां से उसको निकलना आसान हो जाता है। ये महसूस तो है ना? तो ये है कि जब बाबा में हमारा निश्चय पक्का होगा तो निश्चय में अपना हाथ देने की हिम्मत होगी। अगर निश्चय में कमी है तो श्रीमत का बल भी हमें कभी नहीं मिलता है, नहीं तो श्रीमत का बल क्या नहीं कर सकता है, है ना? बड़े से बड़े पहाड़ से भी गुजरना आसान हो जाएगा हमारे लिए, उड़ने की ताकत दे देगा, इतने हिम्मत दे देगा कि कोई भी परिस्थिति को पार करना जैसे लगेगा आसान है, श्रीमत मिली हुई है। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये क्वेश्चन ही समाप्त, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि श्रीमत में, बाबा की रोज की मुरली के अंदर हर बात का जवाब है ही है। हमें किसी को पूछने की आवश्यकता है क्या? कई बार कई लोग हमारे सामने आते हैं प्रश्न लेकर के, बाबा तो ये कहता है लेकिन हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ। उसको ये भी पता है कि बाबा की श्रीमत ये है, लेकिन मेरे सामने जो परिस्थिति है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए पूछना, माना वो क्या करना चाहता है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत नहीं है तो उसमें एक क्या कहे साइड रोड चाहता है कि भाई ऐसा कर ले वे तो, माना हमसे बुलवाना चाहता है कि ऐसा कर ले तो, जैसे कई बार पवित्रता की बात को लेकर के कहीं आते, खान पान की बात को लेकर कहीं आते हैं कि हमें श्रीमत मालूम है लेकिन हमारे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम क्या करें। जब श्रीमत पता है फिर क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ, कोई छोटा रास्ता चाहिए, सहूलियत चाहिए कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं बाबा को याद करके खा लूं, माना हमसे बुलवाएंगे तो पाप का बोझा किस पर चढ़ा, भाई मैंने कहा कि भले कर लो बाबा को याद करके कर लो तो पाप का वो भागीदार तो मैं हो गई ना। इसलिए कई बार कई लोग मेरे से पूछने आते हैं तो मैं कहती हूँ देखो आपको पता है ना श्रीमत क्या है, अब अगर आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं, मैं कभी बोलने वाली नहीं हूँ, मैं साफ शब्द में कहती मैं कभी बोलने वाली नहीं हूँ कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जिम्मेवार मैं हो जाती हूँ और उस पाप के भागीदार मैं बनना नहीं चाहती हूँ। आप खुद अपना रास्ता या तो बनाओ या खुद अपने जीवन की जिम्मेवारी लेने की ताकत है तो लो, श्रीमत आपको पता है क्या है ना। तो भाव ये है, कमजोरी उसकी खुद की है और खुद की कमजोरी जानते हुए उस श्रीमत पर चलने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए चाहते हैं बहन जी हमें डायरेक्शन दे दे तो जिम्मेवार कौन हो गई। तो बहन जियों को क्यों जिम्मेवारी, आप अपने पाप के भागीदार बनाना चाहते हैं, भले 5% भी भागीदार तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम यही कहते हैं जब आपको पता है, अब आप सोचते हैं कि ये श्रीमत को मैं तोड़ मरोड़ करूं, ये मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि ये भगवान की आज्ञा नहीं है कि मैं करूं, ये श्रीमत में मन मत डालने वाली बात है तो मैं ये काम करने वाली नहीं। बाकी आप अपना रास्ता जो निकालना चाहो इस परिस्थिति में वो तो आपको निकालना होगा, है कि नहीं, सही बात बोला या नहीं बोला। आप खुद अपने उसमें चलो, खुद जिम्मेवारी उठाने के लिए सक्षम बनो, बाबा अपने आप बाबा के ऊपर छोड़ेंगे तो बाबा अपने आप आपको सहूलियत कर देगा और उस श्रीमत में कहीं तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है श्रीमत का बल, श्रीमत का बल समझो। बाबा आपका हाथ छोड़ेगा नहीं अगर सही में आपने बाबा के हाथ में अपना हाथ दिया है तो, बाबा नहीं छोड़ेगा। बाबा आपके लिए उस श्रीमत को पालन करने के लिए नया रास्ता बना देगा, है ना, कि सामने वाले की टचिंग बाबा कर देगा और उसको समझा देगा, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। लेकिन अगर आपने श्रीमत को पकड़ा होगा तो आप क्या चाहेंगे कि मैं दूसरा हाथ भी पकड़ लूं, माना बाबा का हाथ तो पकड़ा है लेकिन अगर ये छूटा तो कम से कम किसी और का हाथ पकड़ के तैरने का, जैसे वो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना गौ की पूंछ पकड़ करके तैरने का प्रयत्न तो करूं मैं, ये विश्वास नहीं है, ये निश्चय का बल नहीं। और अगर बल ही नहीं होगा तो उस श्रीमत पर चलने की ताकत नहीं होगी, उसके लिए अंदर कंफ्यूजन चलता रहेगा, है खुद की कमजोरी। तो श्रीमत में अपना हाथ दे करके तो देख लो, श्रीमत में अपना हाथ दे करके तो देख लो क्या होता है। इतना श्रीमत का बल है, लेकिन उसके पहले निश्चय का बल, एक बल, एक भरोसे को लेकर चलना बहुत आवश्यक है। फिर तीसरा बल है योग का बल कहो, तपस्या का बल कहो, है ना। जो योग तपस्या हम करते हैं, ये योग तपस्या भी क्या ताकत रखती है, परिस्थितियों को बदलने की ताकत रख देती है। इसलिए ये आठों बल का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है कि श्रीमत पर चलने के लिए भी योग बल, तपस्या का बल बहुत जरूरी है। जितनी हमारी आंतरिक तपस्या, तपस्या माना क्या है, लगन बाबा के साथ, क्योंकि सही तपस्या तभी होगी जब लगन होगी बाबा के साथ, और वो लगन ही अगन का काम करेगी, और ये लगन की अगन कई चीजों को भस्म करके रख देंगी। कोई विघ्न डालने का प्रयत्न करे, आपका हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करे, नहीं कर पाएगा। ये योग और तपस्या का बल उसकी बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बल जो है ना, ये विद्युत है। कौन सा विद्युत है? संकल्पों का विद्युत है। योग बल में क्या होता है? संकल्पों का बल होता है। और संकल्पों की विद्युत पावर ऐसी है जो लोगों की मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए सक्षम है। इतनी पावर है उसके अंदर, लेकिन ये विद्युत के वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत है। जितना हमारा योग में लगन की अगन तीव्र होगी, तो ये अगन संकल्पों के विद्युत के माध्यम से सबके संकल्पों को बदली करने के लिए निमित्त बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं योग की सकाश क्या नहीं कर सकती है। ये योग में जो संकल्पों का विद्युत पावर है, ऊर्जा है, वो ऐसी ऊर्जा है जो कई लोगों ने अपने बीमारियों को पर प्रयोग किया, बीमारी ठीक कर दी। किया कि नहीं किया? अभी कुछ समय पहले ही गुलजार दादी को देख करके एक डॉक्टर कह रहा था कि दादी को कैंसर जब था, और उस कैंसर के बाद इतना साल हो गया, 89 की बात है दादी को जब कैंसर था, और 89 से लेकर कितना साल हो गया। कहा जिसके शरीर के अंदर, ये इतना बड़ा आश्चर्य है हमारा मेडिकल साइंस के लिए, कि अगर ऑपरेशन करने के बाद भी हमने अगर वो गांठ वांठ निकाल भी दिया हो, तो भी 15 साल के बाद पुनः होने की संभावना हो जाती है। 10-15 साल के बाद पुनः होने की संभावना हो ही जाती है। लेकिन दादी के अंदर इतनी पावर है, उसकी योग की पावर ऐसी है, ये बल उनके पास ऐसा है तपस्या का, कि इतने सालों तक एक कीटाणु तक पैदा नहीं हुआ वापस। नहीं तो कैंसर का कितना भी ऑपरेशन करके निकाल लिया जाए, अंग निकाल दिया जाए, तो भी 15 साल के बाद पुनः और कहीं किस रूप में उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यही बताता है कि ये योग का बल, तपस्या के बल ने उस कीटाणु को ऐसा जला दिया जो चीज मेडिकल साइंस की समझ की बाहर है। अगर अपने शरीर के ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं प्रयोग हम। इतनी ऊर्जा हो जिसके पास, है ना, योग बल तपस्या का बल क्या नहीं कर सकता है। तो तीसरा बल है तपस्या का बल। फिर चौथा बल है पवित्रता का बल। पवित्रता का बल भी क्या नहीं कर सकता है। अगर योग की पावर को बढ़ाना है, उस विद्युत पावर को अगर बढ़ाना है, संकल्पों की विद्युत शक्ति को बढ़ाना है, तो उसमें पवित्रता के बल की आवश्यकता है। इसलिए दोनों का भी बहुत गहरा संबंध है। जैसे अष्ट शक्तियों का आपस में दो दो शक्तियों का गहरा संबंध है, ऐसे योग के साथ पवित्रता का बल, सत्यता का बल जुड़ जाए, और तपस्या के अंदर अगर साइलेंस का बल जुड़ जाए तो क्या होगा, उसके सामने कोई विघ्न खड़ा रहने की हिम्मत भी हो सकती है, हो सकती है। तो पवित्रता का बल क्या करता है, उस विद्युत पावर को बढ़ाता है। ओरा, हर इंसान के आगे पीछे ओरा तो रहता ही है, किसी के आसपास पांच इंच का, पांच सेंटीमीटर का, या एक इंच का, या दो इंच का ओरा रहता है। लेकिन जब उसमें पवित्रता का बल, सत्यता का बल आ जाता है, तो वो संकल्प की पावर को कितनी बढ़ा देता है, हाई वोल्टेज उसके आसपास कितना ओरा हो सकता है, अनलिमिटेड ओरा हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तपस्या के साथ पवित्रता का बहुत गहरा संबंध है। अगर योग नहीं लगता है तो कोई ना कोई पवित्रता की कमी जरूर होगी। जो मन विचलित करता है, यानी वो विद्युत पावर को बढ़ने नहीं दे रहा है, लीकेज हो रहा है वहां से, है ना, लीकेज हो रहा है वहां से, इसलिए उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं संकल्पों में इंप्योरिटी है, कर्मों में इंप्योरिटी है, संबंधों में इंप्योरिटी है, व्यवहार में है, भावनाओं में है, किस लेवल की इंप्योरिटी की कमी है, उसको चेक करना। क्योंकि नहीं तो वहां से वो लीकेज जितना हो जाता है तो वो हमारी योग की शक्ति को बढ़ने नहीं देता है। नहीं तो जब ये दोनों बल आपस में मिल जाए तो वो साक्षात्कार करा सकता है, अनुभव करा सकता है, लोगों को दूर बैठे, आज जानकी दादी का अनुभव विदेशों में लोगों को हो रहा है। ब्रह्मा बाबा जब थे तो ब्रह्मा बाबा का लोगों को साक्षात्कार दूर से होता था, जब सामने आते थे तब तो पता चलता इनको पहले हमने देखा है। क्यों? क्योंकि बाबा के अंदर ये तपस्या और पवित्रता, यही तो सकाश बनती है। हम कहते हैं सकाश देते हम योग में, व्हाट इज सकाश? सकाश माना जब योग तपस्या में पवित्रता संपूर्ण रूप में मिल, तब ये सकाश बनती है, तब ये विद्युत पावर को बढ़ा देती है। नहीं तो वो खाली योग की किरणें हैं, और किरणें कभी कभी ढीली भी होंगी, वो सकाश नहीं बन सकती है। बाबा सकाश देता है क्योंकि बाबा में पवित्रता संपूर्ण है, और इसीलिए बाबा हमें सकाश दे सकता है। लेकिन जब हम कहते कि हम किसी को सकाश दे, लेकिन तब हमारी सकाश काम करेगी जब उस योग बल में पवित्रता का बल, ये दो बल क्या करता है, असंभव को संभव कर सकता है। जो कभी आपने सोचा नहीं होगा वो चमत्कार कर सकता है, चमत्कारिक अनुभव होगा आपको जीवन के अंदर जब ये दोनों बल मिल जाते हैं तो, है ना। इसीलिए ये दोनों बल बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। तभी बाबा कई बार कई लोग आकर के क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारिया का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये पवित्रता में थोड़ी ढील दे देना सब लोग चल पड़ेंगे, वो काम का नहीं है। बाबा कहते हैं वो ज्ञान जैसे क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। वो चमत्कारिक अनुभव तब करा सकता है जब ये पवित्रता का बल उसमें जुड़ा हुआ है। तो योग तपस्या, साइलेंस पावर और संकल्प शक्ति जिसके अंदर जुड़ी है, तब ये पवित्रता का, सत्यता का बल जो है वो असंभव को संभव करने की हिम्मत ताकत दे देता है। ऐसे चमत्कारिक अनुभव होगा तो इसीलिए बाबा इसमें ढील नहीं देता है। ये चलेगा, तुम ज्ञान में तो चलो, नहीं देता है बाबा। साकार बाबा की मुरलियां जब सुनते थे पहले के समय में, बाबा इस पवित्रता की धारणा जिसने नहीं किए होती है उसके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग, जिसको दादियां कहते हंटर लगाया आज बाबा ने, हंटर लगता था, ऐसे ऐसी वाणी चलती थी जिसके अंदर पवित्रता की शक्ति अगर नहीं हो करके वो अगर इंद्र सभा में आकर के बैठ जाए तो बाबा कहते हैं बदबू आ रही है। बाबा को तुरंत वो वाइब्रेशन फील हो जाता था, बदबू आ रही थी बाबा को, है ना। इसीलिए बाबा कई बार कहते इस इंद्र सभा में कोई भी म्लेच्छ को नहीं ले आना, ऐसे ऐसे शब्द बाबा के होते थे, साकार बाबा के। क्यों? क्योंकि बाबा इतना इम्पोर्टेंस देता था उस चीज को, बाबा का अपना अनुभव था, और इसीलिए बाबा अपने हर बच्चे को भी ऐसा बनाना चाहता था अपने जैसा, क्योंकि तभी ये संसार परिवर्तन का कार्य तीव्र हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। साधु सन्यासी खुद पवित्र रहे, जब किसी और को पवित्र, तो क्या कर सके समाज के अंदर, कोई चेंजेस नहीं ला सके, कोई चेंजेस नहीं ला सके, गिरता ही गया समाज, दुनिया गिरती कला की ओर ही गई। अगर ये चढ़ती कला है तो चढ़ती कला का आधार पवित्रता का बल। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप भी अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में चढ़ती कला चाहते हो तो पवित्रता की महत्ता को समझते हुए उस बल को जीवन के अंदर ले आओ, फिर देखो क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। महसूस करके तो देखो, अनुभव करके तो देखो क्या होता है। तो ये है पवित्रता का, सत्यता का बल। मुझे याद आता है बड़ी दादी, एक बार कोई कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी दादी के साथ में सवाल जवाब हो रहे थे, उस समय भरी सभा में बड़ी दादी ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला। सत्यता का बल क्या होता है, जो प्रकाशमणि दादी को इतना अथॉरिटेटिव बना दिया, उसका कारण क्या था? ये पवित्रता, ये सत्य। जिसमें पवित्रता का बल होगा उसमें सत्यता का बल भी जरूर होगा, ये उसकी पहचान है। वो झूठ का सहारा उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, वाणी में पवित्रता उसी का तो नाम है। उसको झूठ, उस दिन की मुरली के अंदर भी बाबा ने वरदान में कहा, सत्यता को स्वयं में सिद्धि प्राप्त है ही सिद्ध होने की, हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्यता स्वयं में सिद्ध है ही है। तो पवित्रता है उसकी पहचान, सत्यता उसकी वाणी के अंदर, है ना। ये है पवित्रता की पहचान, तब वो सकाश का कार्य कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। फिर पांचवा बल है त्याग का बल। लगातार बाबा की हर संडे की मुरली कितनी चल रही है। त्याग हा? त्याग की सूक्ष्म गतियां, संबंध त्याग में देह का संबंध का त्याग, कर्मेंद्रिय के द्वारा जो हो रहा है उसका संबंध जो है उसमें क्या त्याग, लौकिक में अलौकिक में क्या त्याग, एक एक मुरली त्याग महात्याग ये सारी जो मुरलियां बाबा की चली है, ये लगातार 7 मुरलियां उस समय चली थी 82 में त्याग के ऊपर, जिस त्याग की सूक्ष्म गति। तो ये त्याग को जिसने एज इट इज अपना लिया है, स्थूल चीजों का त्याग करने के लिए बाबा ने नहीं कहा है। आज दुनिया में लोग स्थूल त्याग करते हैं तो भी उनमें बल होता है, लेकिन बाबा ने तो हमें क्या सिखाया, सूक्ष्म त्याग की परिभाषा बताई तो उसमें कितना बल होगा। तो त्याग का बल कोई कम नहीं है। ब्राह्मण जीवन में आज दुनिया के अंदर कोई एक दिन उपवास भी कर लेता, अन्न का त्याग करता है तो भी उसके अंदर विल पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो त्याग जो सूक्ष्म बाबा ने बताया, जो उपवास सूक्ष्म स्तर पर बाबा ने बताया है छोड़ने के लिए जो कहा है, वो कितना बल आत्मा में भर देंगी सोचने की बात है। उसको कहीं और से सपोर्ट लेने की आवश्यकता है कि भाई आप मेरे लिए योग करना, जो कई बार हम कहते हैं ना, भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूं आप लोग मेरे लिए योग करना, ये मेरे सामने परिस्थिति मेरे लिए योग करना, सब मिलकर कहने की आवश्यकता नहीं है हमें, किसी से योग मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्याग में अपने आप वो बात पहले से ही सिद्ध हो गई है, वो जैसे पार कर दिया है। सूक्ष्म त्याग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हाँ, उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, त्याग का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये सूक्ष्म त्याग करते हैं तो सद्गुण अपने आप क्या होने लगता है, अपनी खुशबू बिखेरने लगता है। तो वो कार्य हुआ ही पड़ा है, उसके लिए मेहनत नहीं है। तो इसीलिए त्याग का बल भी बहुत पावरफुल बल है। फिर छठा बल, त्याग के साथ साथ क्या जोड़ेंगे, धारणाओं का बल। धारणाओं का बल है, क्योंकि धारणा हमारी तभी हो सकती है जब त्याग होगा, त्याग वृत्ति है तभी धारणा हो सकती है। अगर त्याग नहीं है तो धारणा हो नहीं सकती, वहां सहूलियत ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। अगर उसमें आलस अलबेलापन जुड़ गया तो त्याग ही नहीं, धारणा कहां से होगी। तो क्या करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पर धारणा करने का करते हैं। मुझे कल, मैं एक मैसेज पढ़ रही थी तो किसी ने प्रश्न पूछा था हमको कि भई आजकल पतंजलि वाले ये जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्या कहेंगे, मतलब खाने के दिल है ना तो क्यों पूछते हो, ये स्पष्ट करता है कि आपकी दिल है। तो मैं अगर ना कहूं और फिर आप अवज्ञा करके किसी और से सॉल्यूशन ले कि खा सकते कोई बात नहीं, और आपने खाना चालू कर दिया तो क्या होगा, मेरे ऊपर तो पाप का बोझ चढ़ जाएगा। तो मुझे पढ़ करके बड़ी हंसी आई वो मैसेज कि भाई पतंजलि के प्रोडक्ट जो है उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। अब विवेक क्या कहता है, अपने आप से ही पूछना है हमें, किसी और से पूछने की जरूरत है क्या। अगर हमारे अंदर धारणा का बल हमें चाहिए कि बल बन जाए हमारी धारणा, आज जब बाबा ने ये नियम दिया प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो कभी हमने किसी को पूछा कि भाई थोड़ा बहुत प्याज लहसुन चलेगा कि नहीं चलेगा? कभी पूछा नहीं, धारणा किया ना उसकी, क्योंकि तभी हमारे अंदर बल आया। तो जब उसके लिए कभी नहीं पूछा किसी को कि भाई थोड़ा बहुत प्याज लहसुन खा लिया तो क्या होगा, मेडिसिन के रूप में खाया तो क्या होगा, वो हार्ट जो है उसको ठीक रखेगा, नहीं। बाबा ने कभी उसके लिए स्वीकृति दिया ही नहीं। और इसीलिए किसी भी ब्राह्मण से पूछने जाएं, आप क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आप जानते हैं ये बात, हम किसी भी ब्राह्मण से, बड़ी बहनों से, दादियों से भी पूछेंगे तो भी आंसर क्या मिलना है? नो। इसलिए कभी पूछा तो पतंजलि के लिए क्यों पूछ रहे हैं? क्या रामदेव बाबा खुद बना रहा है क्या? बाबा ने पतंजलि का नहीं बोला इसलिए? कहने का भावार्थ मेरा ये है कि जब धारणाओं का बल अनुभव करना है जीवन के अंदर, अगर जीवन में मुझे धारणाओं का बल चाहिए, क्योंकि ये बल जो है अंतिम समय में बहुत काम आने, ये बल की कमी होने से ही आप कई पेपरों में फेल होंगे, आप कई बातों में गिरने का अनुभव करेंगे, ये महसूसता आएगी कि बल की कमी के कारण हम गिरे हैं, और अंतिम समय में हमें ये बल आवश्यक है, क्योंकि एक साथ जब पेपर आने हैं तो ये अलग अलग बल ही अलग अलग पेपर को संबोधित करेंगे और हमें पास करने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए ये बल में जितना आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर आप अपनी स्थिति, योग की स्टेज बना नहीं सकेंगे। इसलिए ये आठों बल का आपस में बहुत गहरा संबंध, जैसे अष्ट शक्तियों का आपस में संबंध है, ऐसे आठों बलों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो ये बल मुझे अगर चाहिए तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। श्रीमत इतनी क्लियर मिली हुई है हर बात के लिए, पूछना माना मैं थोड़ा क्या चाहता हूं, क्या चाहता हूं, हाँ, मैं थोड़ा सुविधा चाहता हूँ, रिलैक्स चाहता हूँ, कि भाई मुझे रिलैक्स मिल जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें रिलैक्स लेने का प्रयत्न नहीं करना, इसमें अगर रिलैक्स मिल भी गया ना तो जो, जैसे वो कहावत है ना कि बच्चे जो होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी मालिश करते हैं ना, तो पैरों में ताकत आती है खड़े होने की। अगर उस समय माँ ने मालिश नहीं किया तो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें अगर रिलैक्स चाहे तो आप अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो सकेंगे जिंदगी में, और ये अपाहिजपना खुद को आज नहीं तो कल खुद को महसूस कराता रहेगा कि काश उस समय मुझे किसी ने रिलैक्स होने नहीं दिया होता था। आलस्य अलबेलापन के वश रिलैक्सेशन नहीं दिया होता था तो शायद आज मैं इतना ताकतवर होता था। इसीलिए आज के बाद किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, समझा? क्यों किसी को भागीदार बनाना चाहते आपके पाप में, हा? देने वाला भी तो भागीदार हो जाएगा ना, रिलैक्सेशन देने वाला भी तो भागीदार होगा कि नहीं होगा? नहीं, जरूरत नहीं। आप अगर अपने पैरों पर खड़े होकर के उड़ना चाहते हैं तो खुद के विंग्स में ताकत भरो। वो बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि वो कीड़ा जब पतंगा बनता है तो अपना वो कुकुन खुद तोड़ता है। एक बच्चे बच्चे को दया आई और उसने कुकुन खुद फाड़ दिया, कीड़े को बाहर निकाल दिया, क्या हुआ? वो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाया, वो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाया, कभी खड़ा नहीं हो सका, हाँ अपने पंख फड़फड़ा नहीं सका। ठीक इसी तरह अगर आप अपने पंखों में उमंग उत्साह से उड़ना चाहते हैं तो आपका उमंग उत्साह माना उसमें रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, तब आप अपने ही पंखों पर उड़ सकेंगे। इतना याद रखना, जो रिलैक्सेशन देने वाला है ना, वो उस वक्त आपको उड़ाने वाला नहीं है, हाँ दोस्त नहीं है, वो उड़ाने वाला नहीं है आपको, है ना? जैसे वो हंसों का और कछुए का फ्रेंडशिप हो गया, हंसों ने कहा कि चलो अभी मुसीबत के समय पर लकड़ी हम अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं, तुम उसको पकड़ करके उड़ना हमारे साथ में। लेकिन क्या हुआ, आधे तक गया और गिर गया। ठीक इसी तरह अगर आपको अपने पंखों में अगर बल भरना है ताकि अंतिम समय आप सहजता से उड़ सको, तो कहीं पर भी रियायत, सहूलियत, रिलैक्सेशन ढूंढो ना, नहीं उसको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करो। श्रीमत बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हर बात के लिए क्रिस्टल क्लियर है, आप उसको पालन करो, पालन करके देखो, ठीक है ना? तो धारणाओं का बल आपके पंखों में ताकत भरेगा उड़ने के लिए। तो त्याग और धारणा, धारणा वही कर सकता है जिसमें त्याग करने की ताकत हो, त्याग नहीं तो धारणा भी नहीं होगी, ये दो बल साथ में जाते हैं। फिर सातवां बल कौन सा? सेवा का बल। सेवा के द्वारा दुआओं का बल, सेवा जो करते हैं तो सेवाओं में जो हमें दुआएं मिलती है, ये दुआओं का बल है जो हमें हर परिस्थिति में सेफ रखेगी, कवच बन जाएगा हमारे लिए, ये दुआओं का कवच बन जाएगा जो कभी भी कहीं से भी अटैक नहीं हो सकता है, है ना? तो इसीलिए सेवाएं, बाबा भी कहते हैं अंत तक सेवा करनी ही है, है ना? क्योंकि उसी से आपको जो दुआएं मिलेगी, ये दुआएं आपको सेफ रखेगी, बिल्ली के पुंगरे की तरह सेफ रखेगी। लेकिन उसके साथ आठवां बल कौन सा चाहिए? आठवां बल कौन सा चाहिए? श्रेष्ठ कर्मों का बल। श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत जरूरी है, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, ये भी हमारा पुण्य का खाता बढ़ाता है। तो सेवा और श्रेष्ठ कर्म, एक है दूसरों की सेवा करना, एक है श्रेष्ठ कर्म करना। तो बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों का बल क्या करेगा? अपनी हिफाजत करेगा। जैसे वो दिए और तूफान की कहानी है, नन्ना सा दिया तूफान में भी सदा जलता रहा, क्योंकि उसमें अपने आप में बल था, इसीलिए बड़े से बड़े तूफान में भी वो जलता रहा। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों का बल ये हमें इतनी शक्ति देता है, हर रीति से हमें पावरफुल बना देता है, और हमारे कर्म ही हमारी हिफाजत करता है। अंतिम समय में भी हिफाजत अगर हमारी होगी तो अपना कर्म हमारी हिफाजत करेगा। कहां भी अगर कर्मों में त्रुटि होगी तो हमारे कर्म ही हमें सजा भी देने के लिए निमित्त बनेगा। हमारे कर्म भोग है या कर्म योग का बल है, जो बाबा के अंतिम समय की स्थिति का वर्णन जो बाबा ने किया कि जब दादी ने पूछा कि बच्चे जानना चाहते कि आपकी अंतिम समय स्थिति क्या थी, तो उस समय बाबा ने कहा कर्म योग और कर्म भोग की लड़ाई थी, है ना। तो भोगना जो है वो क्यों आती है, कहीं ना कहीं कर्मों में त्रुटि है, वो भोगना का रूप लेगा, वो हमें भोगना का अनुभव कराएगा, दर्द का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर श्रेष्ठ कर्म का बल है तो भोगना हार जाएगी और श्रेष्ठ कर्म विजयी हो जाएंगे। कर्म योग का विजय और कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, वो आपको दर्द पहुंचा नहीं सकती है और अंतिम समय शरीर छोड़ते समय सहजता से हम शरीर छोड़ देंगे। ये है श्रेष्ठ कर्मों का बल। इसीलिए ये आठों बल जीवन ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें कभी भी जीवन में अपाहिज होने नहीं देगा, ये अंदर से शक्ति देगा। जैसे कहा पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जो हर एक चीज को भी अपने अपने स्थान पर रखे हुए हैं, तो हमारे अंदर का ये जो बल है यही हमें स्टेबल अंतिम समय में भी स्टेबल रखेगा, हलचल में नहीं आने देगा और हर रीति से हमारी स्थिति की हिफाजत करेगा। हमारे सामने कवच आ जाएगा और बड़े से बड़े तूफान को पार करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करेगा। तो अष्ट शक्तियां अलग है, लेकिन इसीलिए कहा मम्मा बाबा के जीवन में ये आठों बल था, आठों प्रकार के बल थे, है ना, आठों प्रकार के बल थे। बाबा के सामने बेगरी पार्ट भी आया, कितना समय चला बेगरी पार्ट भी, लेकिन उस समय भी बाबा ने सहूलियत देखी कि बाहर कोई पतंजलि हो जो मैं बच्चों को भी खिला दूं सहजता से मिल। बाबा जंगलों में ले जाकर के करवंदे खिलाते रहे, करवंदे खिलाया, लेकिन बाहर का कोई सोर्स नहीं ढूंढा, पता भी नहीं लगाया कि ऐसी कोई चीज मिलती है कि नहीं मिलती है, है ना। इसीलिए बाबा में बल था, ताकत थी, मम्मा में बल था, ताकत था। ये हमारे विश्वास को और गहरा करता है, हमारे निश्चय को और गहरा करता है। इसलिए सौलियत से अपने निश्चय विश्वास को तोड़ो नहीं, खुद ही खुद के निश्चय और विश्वास को तोड़ेंगे तो कहां के रहेंगे फिर। उस समय कोई आपको उड़ाने वाला नहीं, अंतिम समय हरेक अपने सामने की परिस्थिति के साथ लड़ेंगे तो कौन आपको सकाश देने वाला है, कोई सकाश देने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए खुद में बल भरो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने पंखों में बल भरो, जो सहजता से अपने वतन की ओर हम चल सके, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी भोगना के दर्द से। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सेवा और श्रेष्ठ कर्म में बहुत अंतर है। सेवा माना जैसे कोई भी हम सेवा करते, छोटी मोटी भी सेवा करते, किसी को कोर्स करा दिया किसी और दूसरों की सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन श्रेष्ठ कर्म खुद के लिए। माना जैसे आप खुद अभी जैसे सेंटर पर रहते हैं, अभी आप खुद जो है सारा सेंटर का काम करती है, तो ये श्रेष्ठ कर्म में गिनती होता है, आपका श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ाता है, है ना। सेवा अक्सर दूसरे के लिए जब कहा जाता है कि दूसरे, लेकिन जब कोई भी कार्य में खुद की उन्नति होती है, खुद की प्रगति है, तो ये श्रेष्ठ कर्मों का बल है जो हमें प्रगति कराएगा, उन्नति हमारी होगी, है ना।
ओम शांति। ऐसा लग रहा था दीदी की क्लास को सुनकर दीदी ने जैसे छोटे बच्चों की पुरुषार्थ की टांगों पर मसाज कर दी। खड़े हो गए मजबूत। दूसरा ऐसा अनुभव हो रहा था कि दीदी ने सिर्फ हमें 8 प्रकार का बल नहीं दिया बल्कि 8 प्रकार के बलों का एक लड्डू खिला दिया है, जिस देशी घी के और ड्राई फ्रूट के लड्डू को खाकर हम ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। ऐसा फील कर रहे हैं? एक हाथ की ताली से दीदी को आश्वस्त करें। कितनी सूक्ष्म और कितनी ऊंचाई पर हमारे पुरुषार्थ को ले जाने वाली दीदी की अनुभव युक्त क्लास है। कहने में आता है 3 विषयों का रिसर्च वर्क किया है, समर, रामायण और गीता, लेकिन मुझे तो आज की क्लास सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिपल आप अपने जीवन पर रिसर्च करते रहते हैं और बाबा के एक एक अनमोल महावाक्य पर रिसर्च करते रहते हैं हम लोगों को ऐसी सुंदर डिश बनाकर खिलाने के लिए। आनंद आया, पवित्रता चमकी। खुदा दोस्त के प्रति जो हमने कल लेटर लिखा था उसमें कुछ आपने अपनी प्रश्न किए होंगे, कुछ उत्तर मांगे होंगे, तो आज आपकी इस क्लास से हमें बहुत स्पष्टीकरण, मजबूती और हल्कापन मिल रहा है। अब फरिश्ता बनना, फरिश्ता बनना। दीदी को हम क्या कहें, शुक्रिया कहें, धन्यवाद कहें, थैंक्स कहें?
बाबा का, हाँ बाबा का।
इसीलिए आप बड़ी हैं, क्योंकि बाबा ने दिया हम सबको, लेकिन बड़ा भाई बहन क्या करता है, उस चीज को सरल करके छोटों को दे देते हैं। इसलिए हम तहे दिल से दीदी ने जो हमें ये सारा नॉलेज आज दिया है उसको हम पुरुषार्थ की रफ्तार में परिवर्तित करेंगे, ठीक है? तीव्र पुरुषार्थ, ऊंची उड़ान बनाएंगे। वो एक हाथ की ताली से दीदी को आश्वस्त करें, शुक्रिया करें। जो प्यार आपने दिया है, जो अनुभव आपने दिया है, उसे हम जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। आपका ध्यान रहे कि ये जो भी क्लासेस हैं इनकी MP3 बन रही है, तो आप नाम नोट करा देंगे दीदी को और वो सब आपको कल फिर नाम नोट कराने पर ही मिल पाएगी और सायंकाल क्लास में समय से पहुंचेंगे, साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। अभी हम क्लास सुनते ऐसा फील हो रहा था जून का महीना चल रहा है और बाबा ने बाय लक ऑफ द ड्रामा हमको जून में यहाँ भट्टी के लिए बाबा बुलाए और मम्मा दीदी के द्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हो गए। रियली इतना जो मम्मा के विशेषताओं में बताते, मम्मा में ज्ञान का कितना बल था, तो उस ज्ञान के बल से दीदी ने हमको मम्मा के रूप में 8 बल दे दिया। इतना रियली बहुत 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 प्रेशियस क्लास है। बहुत दिल से ताली बजाओ।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह